हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लड़कियों के जिस्म पर कहीं और एक भी खरोच का निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट्स गायब है। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि जो ये प्राइवेट पार्ट्स इतने शार्प और इतने नुकीले चीज़ों से काटे जाते हैं कि इतने नुकीली हथियार तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पास भी नहीं रहते हैं। क्या जैसे ही अमन ने ये सुना हुआ वो हैरान हो गया था और सोचने लगा था, 131 लड़कियाँ, यानी कि इस और महीने एक और लाश मिलने वाली है, एक और मर्डर होने वाला है, उसके बाद टोटल 132 लड़कियाँ। नहीं नहीं, अमन ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पिछले 11 सालों से हर महीने एक ऐसी लड़की की मौत हो रही है और उसके साथ इतनी बुरी तरह दरिंदगी हो रही है। भले ही उसके साथ रेप ना किया जा रहा हो, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स तक गायब किया जा रहा है। आखिरकार चल क्या रहा था? अमन का हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था और अब तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि ज़रूर इसके पीछे ज़रूर उसका कोई ना कोई सफ़ेद तीसरा जिन ही है। तो इसीलिए अमन ने अब काव्या से मिलने का फ़ैसला कर लिया था। जल्दी ही अमन कमिश्नर साहब से मिलकर अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वैसे भी उसे अगली सुबह अपने ऑफिस में पहुँचना था, क्योंकि अगली सुबह ऑफिस में जल्द से जल्द अपने ऑफिस में पहुँचकर काव्या से मिलना चाहता था। वैसे भी काव्या उसे अगली सुबह मिलने वाली थी। वहीं दूसरी ओर सोनल परी सीधा अमन के बगीचे में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने सोच लिया था जब तक वो अमन की सहायता नहीं कर देती और तारा का पृथ्वी लोक आने का रास्ता साफ नहीं कर देती, तब तक वो इस खूबसूरत से बगीचे में ही रहेगी। वैसे भी सोनल परी को फूलों से बहुत ही ज्यादा प्यार था और अमन के उसे बगीचे में एक से एक बढ़कर बड़े ही सुंदर सुंदर काफी सारे फूल थे, तो इसीलिए सोनल परी ने अपना जितना भी टाइम वो वहां रहेगी वो अमन के खूबसूरत बगीचे में ही गुजारेगी। वेल, बगीचे में पहुंचकर सोनल परी ने कुछ मंत्र का उच्चारण करते हुए तारा से बातें करना शुरू कर दिया था और कहने लगी थी, तारा, मैं आज अमन से मिली हूँ और अमन तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। ऐसे नहीं होता फोन पर कि दूसरे के हालचाल की डिटेल्स देना। उसी तरह से सोनल परी अपने मंत्रों के द्वारा तारा को अमन के हालचाल दे रही थी और जैसे जैसे तारा परी परीलोक में अमन के बारे में सारी चीज सुन रही थी, उसका दिल और भी ज्यादा भाव विभोर होता जा रहा था और उसके लिए अपने दिल के इमोशन पर, जज्बात पर काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो अमन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अमन के बिना रहने के बारे में उसने सोचा तक नहीं था। वेल, जल्दी ही तारा ने सोनल से कहा था कि वो जल्द से जल्द उस तीसरे जिन्नात तक पहुंच जाए और उसकी पूरी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द अमन को दे। उसके बाद अमन उस तीसरे जिन को अच्छा खासा सबक सिखाए और उसका परीलोक से पृथ्वीलोक आने का रास्ता साफ हो जाए। तब सोनल परी ने तारा परी से कहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस तीसरे जिन का पता लगा लिया है और अब कल बातों ही बातों में अमन से जब मिलूंगी मैं उसके बारे में उसे जरूर बता दूंगी। वहीं दूसरी ओर अमन बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था, क्योंकि उसे पूरे को पूरे यकीन था कि कल के दिन वो तीसरे जिन को जरूर ढूंढ निकालेगा और उसे मार डालेगा। उसके बाद उसकी प्यारी तारा हमेशा हमेशा के लिए उसके पास होगी, क्योंकि अमन को अपने कमरे का खाली बेड खाने को दौड़ने को आता था। उसके लिए एक भी दिन काट पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने अपने जादू के द्वारा तारा परी का पता लगाने की कोशिश नहीं की थी। उसने तारा परी का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जादू भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के महागुरु अक्षत खुराना के कहने पर तारा परी को ढूंढने के लिए अपने कड़े मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन 3 दिन पूरे हो चुके थे, अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें लगने लगा था कि जरूर जिन महाराज अमन ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है कि कोई उनकी बीवी तक ना पहुंच पाए। लेकिन जब अक्षत ने उसे इस बात का यकीन दिलाया कि खुद जिन महाराज अमन को नहीं पता है कि उसकी बीवी तारा कहाँ है, तो भला वो जाल कैसे बढ़ा सकता था। काली शक्तियों के महागुरु की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो ये भी समझ चुका था कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो वो नहीं जानता था, क्योंकि काली शक्तियों का महागुरु ने जब विक्रांत और उसकी माँ उनकी जिंदगी में आई थी तब इस बात के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिरकार तारा है कौन, उसकी पहचान क्या है, लेकिन तब भी वो उसकी किसी तरह की कोई पहचान के बारे में पता नहीं लग पाया था और विक्रांत की शक्तियों के आगे ना ही उसने पता लगाने की कोशिश की थी। अब जैसे ही काली शक्तियों के महागुरु ने अक्षत खुराना को इस बात के बारे में बताया कि तारा का कहीं कुछ पता नहीं लग पाया है और तुम्हें ही अब खुद तारा का अपने सिरे से पता लगाना होगा, क्योंकि वो उसका कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं लगा पाए हैं। जैसे ही अक्षत ने ये सुना उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तो सोचा था कि काली शक्ति का महागुरु जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो जिन महाराज अमन की एक इंसानी बीवी का पता नहीं लग पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे अब काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। लेकिन वो काली शक्ति के महागुरु के सामने अपनी किसी तरह की कोई जबान नहीं जला सकता था, तो इसीलिए उसने अपने सिरे से तारा का पता लगाने के बारे में सोच लिया था। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित सिर्फ और सिर्फ उसे कमजोर मोमेंट के इंतजार में था कि कब उसे वो कमजोर मोमेंट मिलेगा और वो अमन के जिस्म में अपने दानव का प्रयोग करवाएगा, क्योंकि ये दानव इस बार जो उसने पैदा किया था वो उसने अपने जिस्म से पैदा किया था। अपने जिस्म का एक बाजू काटकर उसने उसे यज्ञ में झोंका में था, जिसके फलस्वरूप उसे वो दानव मिला था। वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, और एक बार अगर ये काली शक्तियों के मालिक अमित का दानव अमन के जिस्म में प्रवेश कर जाता है तो काली शक्तियों के मालिक का अमित का एक हिस्सा अमन के अंदर चला जाएगा और फिर अमित के हाथों में अमन की पूरी तरह से लगाम हो जाएगी और अमित जो चाहेगा वो कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उसने जल्दी ही एक ऐसा मोमेंट तैयार करने की कोशिश की थी जिस मोमेंट में वो अमन को कमजोर कर सके, और जो कि अब उसे इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अमन की बीवी तारा गायब है, तो उसने इस बात के फायदे उठाने के बारे में सोच लिया था। उसे अब किसी न किसी तरह से अमन से मिलना था। अमन से मिलने के बाद तारा का जिक्र बातों ही बातों में करके उसे कमजोर करना था और मौका देखकर अपने उस दानव को, जो कि वो परछाई के रूप में अपने साथ लेकर जाने वाला था, उसे अमन के जिस्म के अंदर प्रवेश करवाना था। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्लान अमित ने अपना तैयार कर लिया था, और मालिका का जो पहले विक्रांत रंधावा से उम्मीदें लगा बैठी थी, उसके बाद वो अक्षत से उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन अब उसने सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों के मालिक अमित से ही उम्मीद लगा ली थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि उसे अमित के साथ अभी पूरे मन से रहना होगा। हालांकि अमित उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। जब भी उसे मौका मिलता था उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता था, हालांकि वो उसके साथ किसी तरह का कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बनाता था,
लेकिन वो दूसरे फिजिकल तरीकों से उसके जिस्म को काफी ज्यादा तकलीफ हो जाता था और अपने दिल को सुकून पहुंचाता था, क्योंकि जब तक वो अमन को नहीं हरा लेता अपने पश्ती से निकलने के लिए वो मलिक के जिस्म का ही प्रयोग किया करता था। रात गुजर रही थी और अगली सुबह अमन ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। हालांकि वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे ये बात याद आ गई थी कि जब वो पुलिस स्टेशन में गया था तो एक लड़की काव्या उसके पास आई थी और उसने कहा था कि वो उसके ऑफिस में ही उसे मिलेगी, तो अमन उससे मिलने के लिए जल्दी ही ऑफिस में पहुंच चुका था। वहीं जैसे ही काली शक्तियों के मालिक अमित को इस बात के बारे में पता चला कि आज अमन यानी कि जिन महाराज अपने ऑफिस में आया है, तो वो बहुत खुश हो गया था। उसने सोचा कि अगर उसे वो मिल जाता है तो वो आज के आज ही उसके अंदर अपने दानव को प्रवेश करवा देगा और उसके जिस्म के अंदर पूरी तरह से रम जाएगा। किसी को भी इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो भी अमित कहेगा वो दानव सिर्फ और सिर्फ वही करेगा, क्योंकि वो उसके जिस्म से और उसके खून से बना था। वहीं काव्या आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो इंसानी वेश में आकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे तारा परी पृथ्वी लोक आई थी, उसे भी पृथ्वी लोक पर जाकर कुछ दिन जिंदगी जीने का मन था, क्योंकि अब उसे खुद रानी माँ और तारा परी ने अपनी शक्तियों के द्वारा पृथ्वी लोक पर भेजा था, तो वो आसानी से अब यहाँ रह सकती थी। वरना परियों के लिए पृथ्वी लोक पर रहने की एक लिमिट तय हुआ करती थी, लेकिन अब उसके पास किसी तरह की कोई लिमिट नहीं थी। उसने सबसे पहले सुबह उठकर पूरे के पूरे बगीचे को अच्छी तरह से घूमा था, इंसानों की तरह एक फूल को छूकर देखा था। वो काफी ज्यादा अपने आप को इतनी खूबसूरत जगह पाकर को बहुत खुश हो रही थी। और फिर जल्दी ही उसने अपनी जादू का प्रयोग करते हुए अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने दिमाग में अमन का ऑफिस का एड्रेस सेट करने के बाद वो उसकी ओर रवाना हो चुकी थी। और जैसे ही मामूली इंसानों की तरह रिक्शा से काव्या अमन के ऑफिस की ओर निकली, सड़कों पर चलते हुए दौड़ते भागती जिंदगी, इतने सारे इंसानों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन फिलहाल उसे जल्द से जल्द तारा का दिया हुआ काम पूरा करना था, तो इसलिए वो देर नहीं करना चाहती थी और न ही सबको देखने में अपना टाइम बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन इस दुनिया को देखने के लिए उसके दिलो दिमाग में बस चुकी थी कि परीलोक में उसने सिर्फ चारों तरफ परियां ही परियां और बड़ा सा महल, बड़े से खूबसूरत गार्डन वगैरह ये सब कुछ ही देखा था, लेकिन वो सब कुछ जादू का था। लेकिन इंसानी दुनिया में आकर जो कुछ भी वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी वो सब कुछ असली था, वो जादू का नहीं था। तो इसीलिए काव्या को वहां जाकर यानी कि सोनल परी को वहां पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर बहुत खुश भी हो रही थी। और जैसे ही काव्या का रिक्शा अब आगे बढ़ा, जल्दी ही वो रिक्शा किसी से टकरा गया था। काव्या ने अमन के ऑफिस में जाने के लिए एक रिक्शा बुक किया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी उसे इंसानों की तरह ही जाना है। वो गायब होकर भी चाहती तो सीधा सीधा अमन के ऑफिस में पहुंच सकती थी, लेकिन वो इस तरह से गायब होकर अमन के ऑफिस में नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो केवल इंसानों की तरह ही उसके ऑफिस में जाना चाहती थी।
तो इसीलिए सोनल परी जल्दी ही रिक्शा के द्वारा जाने लगी थी। लेकिन रिक्शा वाला अपना संतुलन को बैठा था। वो सामने आते हुए एक बड़ी सी रेंज रोवर से टकरा गया था। जैसे ही गाड़ी किसी से टकराई, तब अचानक काव्या काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि उस गाड़ी में से एक बड़े ही स्टाइलिश लुक के साथ एक आदमी बाहर निकला था और रिक्शा वाले को घूर कर देखता हुआ बोला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी गाड़ी को ठोकने की? वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत खुराना ही था, जिसके अंदर एक महाशक्तिशाली असुर निवास किया करता था। जैसे ही काव्या ने अक्षत को देखा तो वो उसे देखते ही समझ चुकी थी कि ये कौन था, और वो थोड़ा सा डर भी गई थी। वो सोचने लगी थी कहीं उसकी पहचान उसके सामने रिवील ना हो जाए। लेकिन जब तक काव्या कुछ बोलती, रिक्शा वाले ने दोनों हाथ अक्षत के सामने जोड़ लिए थे और कहने लगा था, माफ कीजिएगा साहब, हमने आपको नहीं देखा। तभी अक्षत की नज़र रिक्शा पर बैठे हुए बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी थी, और जैसे ही वो हल्का सा उसके करीब जाने लगा, अचानक से उसकी खुशबू उसकी नाक से जाकर टकराई थी। काव्या की खुशबू महसूस करते ही अक्षत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि ये खुशबू से वही खुशबू थी जो कि तारा परी में से आया करती थी। उसे देखकर अक्षत को न जाने क्या हुआ कि अचानक उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही अक्षत ने सोनल परी का हाथ पकड़ा, सोनल परी का दिल किया कि वो अपनी जादुई शक्ति का यूज करके इसे बकरा या मुर्गा बना दे। लेकिन अगले ही पल सोनल परी अब काफी हैरान हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि उसे परियों की तरह बर्ताव नहीं करना है, उसे नॉर्मल इंसानों की तरह ही बर्ताव करना है। तभी उसने अक्षत से कहना शुरू कर दिया था, हेलो, कौन है आप और ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? देखिए, आप अमीर होंगे, अपने घर के होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गरीब रिक्शा वाले को इस तरह से रोके उसमें सवार सवारी के साथ बदतमीजी करें। क्या अक्षत सोनल परी को पहचान पाएगा? क्या सोनल परी अमन की मदद कर पाएगी? क्या अमन तीसरे सफेद जिन को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।